दौला पुस्तक छठवी लेक्चर नंबर एक ओ नमः शिवाय
ओ नमः शिवाय
ओ नमः शिवाय
ओ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वज्जायानं नमो लोए सौवसाऊनं त्रिभुवनशिरसे हरे भवभयगद्भादुनिगदे पणौ सिद्धे जीवत्थान समलिनगुणशूलियं वोच्चम्।
आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें प्रथम खंड जो जीव स्थान है उसकी चूली का है। अभी हमने जो मंगलाचरण देखा था उसका अर्थ देखते ही नीचे त्रिभुवन शिरसे हरये, त्रिभुवन रूप, त्रिभुवन है तीन भुवन, कौन से तीन भुवन? अधोलोक उधोलोक मध्यलोक के तीन लोक कहो, तीन भुवन कहो। तो त्रिभुवन रूप लोक के शिर पर स्थित यानी उसके अग्रभाग यानी टॉप पोर्शन, शेखर स्वरूप और भव भय के गर्भ से विनिर्गत, विनिर्गत यानी बाहर निकले हुए, भव का भय, भव यानी संसार में जो परिभ्रमण है उसके भय के गर्भ से जो बाहर निकल चुके हैं, ऐसे सिद्धों को प्रणाम करके। ये सिद्धों के विशेषण है कि वो लोक के अग्रभाग में स्थित है और ये भवसागर से पार हो गए हैं, यानी जन्म मरण अभी उनका नष्ट हो गया, निकल गया। उनको प्रणाम करके जीवस्थान नाम के प्रथम खंड की निर्मल गुण वाली चूलिका को कहता हूँ। सिर पर स्थित शेखर, सिर में जो शेखर है ना, मेरे ख्याल से जो कुछ मुकुट होगा या कुछ शिरोमणि होगा, कुछ यह जो सेहरा कहते हैं ना, मस्तक पर धारण करते मुकुट, उस पर उस तरह से है कुछ। हाँ, आपका प्रश्न सही है। चूली का इन्हें क्या निकालो जरा, पेज 16 प्रस्थान को 16 से नहीं, ये किसको कहना? हाँ, विषय परिचय वाला 16। जहाँ विषय परिचय चालू हो गया, अभी आपके पेज में इसमें कुछ डिफरेंस हो सकता है। देखो, प्रस्तुत ग्रंथ षटखंडागम के प्रथम खंड जीवस्थान का अंतिम भाग है। अभी तक जीवस्थान ही चल रहा है। प्रथम खंड जो है, प्रथम खंड ही चल रहा है। षटखंड में से अभी छठी पुस्तक तक आए, पहला ही खंड चालू है। ये उसमें से प्रथम खंड का अंतिम भाग, जिसे धवलाकार ने चूलिका कहा। अब चूलिका कहना किसको? तो पूर्व में कहे हुए अनुयोगों के कुछ विषम स्थलों का जहाँ विशेष विवरण किया जाए उसे चूलिका कहते। क्या कहना चाहते? किसी भी ग्रंथ की चूलिका किसको कहेंगे? कि जो पहले बता चुके हैं उसी को। अभी जो टीकाकार आचार्य, उनको ऐसा लगता है कि इस पॉइंट पर, इस विषय पर और अधिक कुछ विवेचन आवश्यक है शिष्यों को समझाने के लिए, तो वो फिर दोबारा उस विषय को समझाएंगे तो उसको कहेंगे चूली, कहे हुए या कुछ नहीं कहे हुए भी उस संदर्भ में जो होते हैं उसको कहेंगे चूलिका। यहाँ चूलिका के 9 अवांतर विभाग किए गए हैं जिनका परिचय यहाँ सब बता दिया है, परंतु यही सब आने वाली बात है तो हम डायरेक्ट पुस्तक से ही पढ़ेंगे। नीचे भी देखो गोमटसार कर्मकांड की जो एक फुटनोट उद्धृत की है, सम्मत्तेषु अठ्ठसु अनियोगत दारेषु तुलिया किमर्थम आगदा, यानी ये आठवीं अनियोग द्वारों में फिर चूलिका क्यों बताई गई। पूर्वोत्तानम अठम अनियोगत दाराणम, यानी पूर्वोक्त जो 8 अनियोग द्वार है कौन से 8 अनियोग द्वार बताओ?
अरे अनियोग
8 अनियोग द्वार बताने आपको। हाँ
द्रव्य क्षेत्र काल भाव
नहीं
सत्व
सत प्ररूपण हमने देखी, सत
प्रमाण अनुगम
संख्या यानी द्रव्य प्रमाण अनुगम, फिर क्षेत्र
क्षेत्र काल
अंतर बरोबर है ना, अंतर
क्षेत्र काल अंतर भाव।
पहले क्षेत्र फिर स्पर्शन फिर काल फिर अंतर फिर भाव और फिर अल्पबोध जो अभी हमने देखा, तो अल्पबोध तक 8 पूर्वोक्त 8 अनियोग द्वार हो गए। तो कहते पूर्वोत्तानम अष्टम अनियोग दाराणम विषम पयस विवरणम आगदा, यानी उसमें जो कुछ विषम विशेष विशेष विषयों का विवरण यहाँ बताएंगे। आगे भी देखें चूलिया नाम किम, ये गोमटसार की बात है। अभी जो बात बताएंगे ना चूलिका किसको कहते हैं वो तो यहाँ बताने वाले चूलिका किसको कहते हैं, परंतु यहाँ गोमटसार का कर्मकांड का यहाँ एक उद्धरण दिया है। चूलिया नाम किम, चूलिका किसे कहते हैं? एकारस अनियोग दारेषु सुइदत्थस विशेष यून परुवणा चूलिया, यानी वहाँ 11 अनियोग द्वार में सूचित अर्थ की विशेष प्रकार से प्ररूपणा करना उसको चूलिया कहते हैं। खुद्दाबंध अंतिम महादंडक उक्त अनुक्त दुरुक्त चिंतकन चूलिका, यानी ये खुद्दाबंध के अंतिम महादंडक में ये बताया है। गोमटसार में अब बता रहे कि उक्त अनुक्त दुरुक्त चिंतनम चूलिका, यानी बताए हुए नहीं बताए हुए या वो अन्यथा बताए हुए उसका फिर उस संबंध में चर्चा करना उसको चूलिका कहेंगे। अब अपने पेज पर आना, क्योंकि ये जो वहाँ जो बताए सारे विषय परिचय वो तो क्रम से आने वाली है, वही बात हम पढ़ने जा रहे हैं डिटेल में। तो हमने अभी मंगलाचरण को देखा है कि इस पुस्तक में तो चूलिका का यानी जो विषय ऑलरेडी आ चुके हैं उसी के बारे में विशेष विवरण रूप ये बात यहाँ बताई जाएगी। ये अंतिम है जीव वो प्रथम खंड जो है जीवस्थान नाम का वो यहाँ पूरा हो जाएगा। एक नंबर जो ऊपर का सूत्र है ना लंबा इसको पढ़ेंगे। कदी काओ पयड़ियो बंधरी केवड़ी काल छिदिये ही कम में ही सम्मतम लभदी वा न लभदी वा केवचिरेण काले न वा कदी भाये वा करेदी निच्छत्तम वसामना वा कवना वा केसु व खेतेसु कस्सव मूले केवड़ियम वा दंसन मोहनियम कम्मम खवेंतस्त चारित्तम वा संपूर्णम परिवज्जंतस्त। इसका अर्थ अब देखते हैं। सम्यक्त्व को उत्पन्न करने वाला मिथ्या दृष्टि जीव कितनी और किन प्रकृतियों को बांधता है, यानी ये बातें पूर्व में नहीं बता चुके थे, केवल उन्होंने गुणस्थान और फिर मार्गणा वगैरह वगैरह का विशेष वर्णन किया है, उसके डिटेल सब बताते समय तो कितने प्रकार के वगैरह वगैरह चर्चा हुई थी। तो यहाँ कहेंगे सम्यक्त्व को जो मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होगा, यानी जो मिथ्या तो में से सम्यक्त्व प्राप्त करेगा, उसकी कौन सी प्रकृतियाँ बन जाएगी, कितनी हो और कौन सी, कितने काल यानी स्थिति वाले कर्मों के तथा सम्यक्त्व को प्राप्त करता है। यानी कर्मों की कितनी स्थिति रहने पर सम्यक को प्राप्त करता है अथवा नहीं प्राप्त करता है, यानी कौन सी स्थिति वाले कर्म कितनी स्थिति होने पर सम्यक को नहीं प्राप्त होता, कितनी स्थिति होगी तो प्राप्त करता है, कितने काल के द्वारा मिथ्यात्व कर्म को कितने भाग रूप करता है, यानी मिथ्यात्व कर्म में से हम पे ना तीन भाग होते हैं तो कितने काल में करते हैं और किन किन क्षेत्र में तथा किसके पास में कितने दर्शन मुनि कर्मों को क्षपण करने वाले जीव के, यानी दर्शन मुनि की क्षपणा करने वाले की क्या क्या कंडीशन जरूरी होती है, समझे ना, ये तो कर्म भूमि के मनुष्यों में ही केवली शुद्ध केवली के पाल में वगैरह वगैरह जो कंडीशन बताएंगे तथा किसके पास में कितने दर्शन मोहनीय कर्म को क्षपण करने वाले जीव के और संपूर्ण चारित्र को प्राप्त होने वाले जीव के मोहनीय कर्म की उपशमना तथा क्षपना होती है। यानी सम्यक्त्व और ये क्षपक श्रेणी उपशम श्रेणी उसके बारे में यहाँ विशेष चर्चा होगी। अब दो नंबर के पृष्ठ पर आते हैं। शंका, जीव स्थान नामक प्रथम खंड संबंधी आठों अनियोग द्वारों के समाप्त हो जाने पर यह स्थूलिका नामक अधिकार किस लिए आया है, क्योंकि सब ये विस्तार से जीवस्थान जीव संबंधी सब पूरी प्ररूपणा हो गई है, अभी ये फिर दोबारा स्थूलिका क्यों रह रहे, उसका समाधान, पूर्वोक्त आठों अनियोग द्वारों के विषम स्थलों के विवरण के लिए यह स्थूलिका नामक अधिकार आया है, यही बात उन्होंने विषय परिचय में लिखी। शंका, यहाँ पर शंकाकार कहता है कि चूलिका नामक अधिकार आठों नियोग द्वारों से प्ररूपित ही अर्थ को प्ररूपण करता है अथवा अन्य अर्थ को, मैंने दो ऑप्शन बताए, प्ररूपित अर्थ को बताएंगे कि अन्य अर्थ को, यदि उसी अर्थ को प्ररूपित करता है तो पुनरुक्त दोष आता है, यानी बताई हुई बात फिर दोबारा बताना, इसको पुनरुक्त दोबारा उक्त करना। द्वितीय पक्ष, दूसरा ऑप्शन क्या दिया था उन्होंने, अन्य अर्थ को प्ररूपण करने वाला है क्या, द्वितीय पक्ष में वह चतुर्दश यानी 14 जीव समास प्रतिबद्ध अर्थ का प्ररूपण करता है, यानी 14 जीव समास के बारे में, जीव समास कहो गुणस्थान भी कहो उसके बारे में, उसके प्रतिबद्ध यानी उससे लगते हुए वाक्यों की प्ररूपणा होती है, अथवा चतुर्दश जीव समास अप्रतिबद्ध अर्थ का, क्या उससे सार का कुछ लेना देना नहीं है, दूसरा ही कुछ विषय है उसका बताने वाला है। अब कहते हैं प्रथम विकल्प के मानने पर, यानी 14 जीव समास के साथ अगर वो प्रतिबद्ध है तो 14 जीव समासों के प्ररूपण करने के लिए उस विषय में ये आठ ही अनुयोग द्वार जानने योग्य है। इस प्रकार के इस सूत्र के अवधारण रूप एवकार पद के विफलता प्राप्त होती है, क्योंकि पहले बता चुके हैं कि ये आठ अनियोग द्वार ही पर्याप्त है उसको जानने के लिए, तो एव ऐसा लिखा ना, बस इतनी ही बात आवश्यक है तो वो सूत्र निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि चतुर्दश जीव समास में प्रतिबद्ध अर्थ का प्ररूपण करने वाला चूलिका संगीत यानी चूलिका नामक नौवां अनियोग द्वार पाया है, यह फुल स्टॉप देना, यानी उसने ऑप्शन दिए कौन से, यानी ऐसा होगा तो ये होगा, ये दोष आएगा, ऐसा होगा तो ये दोष आता है। अब कहते द्वितीय पक्ष, यानी ये 14 जीव समाज के साथ प्रतिबद्ध नहीं है ऐसा मानने पर चूलिका नामक अधिकार जीवस्थान से पृथकभूत हो जाएगा, अगर वो दूसरा विषय ऐसा मानेंगे तो जीवस्थान उसको नहीं कह सकते, क्योंकि चतुर्दश जीव समास प्रतिबद्ध अर्थों को नहीं कहने वाले अधिकार के जीवस्थान यह संज्ञा का विरोध है। ये इतनी लंबी चौड़ी उसकी शंका है, उसका समाधान करते हैं। यहाँ पर उक्त शंका का परिहार किया जाता है। न तो प्रथम पक्ष में दिया गया पुनरुक्त दोष आता है, इसने बताया था कि आठ अनियोग द्वारों में तो अर्थ प्ररूपित किया है, उसी अर्थ को दोबारा बताएंगे तो पुनरुक्त दोष आएगा, तो कहते वो नहीं आता, क्योंकि आठों ही अनियोग द्वारों से नहीं प्ररूपण किए गए तथा वहां पर कहे गए अर्थ के निश्चय उत्पन्न करने वाले, यानी उन अनियोग द्वारों में विस्तार से जिनके बारे में कथन नहीं हुआ था, परंतु अर्थ तो वहां पर कहा गया था, शिक्षाई कमेंट वगैरह आदि बातें तो आई थी, परंतु वो किसके होती है क्या होती है ये कंडीशंस वहां नहीं बताई थी। और जीवस्थान से कथनचित पृथक दुख, किसी अपेक्षा पृथक दुख तथा उन आठों अनियोग द्वारों से ही सूचित अर्थ का, उन आठ अनियोग द्वारों में जो अर्थ सूचित किया है उसी का यहाँ विवरण होगा, कथनचित किसी अपेक्षा से जुदा होगा, इस चुलिका नामक अधिकार में प्ररूपण किया है। अब द्वितीय पक्ष के अंतर्गत, द्वितीय पक्ष क्या बताया था,
पृथक भूत अलग ये के
उसके प्रतिबद्ध है क्या अप्रतिबद्ध है हुँ? और उसमें आठ ही अनियोग द्वारा एवं पर लगाया था, तो कहते द्वितीय पक्ष के अंतर्गत प्रथम पक्ष में बतलाई गई एवकार पद की विफलता भी नहीं आती है, क्योंकि चुलिका का आठों अनियोग द्वारों में अंतर्भाव हो जाता है, ये आठ अनियोग द्वारों के जो विषय उसी में ये चुलिका भी अंतर्भूत हो जाती है। शंका का ठीक है, चुलिका का आठों अनियोग द्वारों में अंतर्भाव कैसे होता है, वो द्वार लिखना बराबर धार हुआ है, इसका समाधान, क्योंकि चुलिका नामक अधिकार आठों अनियोग द्वारों से सूचित अर्थ का प्ररूपण करता है, उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। क्षेत्र प्ररूपणा, काल प्ररूपणा और अंतर प्ररूपणा, ये याद है ना, यानी उस गुणस्थान वाले या उस विशिष्ट मार्गना वाले जो कितने क्षेत्र में रहते हैं, स्पर्शन में कौन मारणातिक आदि की अपेक्षा हमने लिखा था, स्पर्शन कहाँ करें, स्पर्शन में तीन काल की अपेक्षा लगी थी, और अंतर का अर्थ हमने काल और अंतर क्षेत्र भी स्पर्श नहीं लिया, क्षेत्र काल और अंतर लिया, काले ने उसमें लगातार रहने का काल और अंतरे ने उसमें नहीं तो वापस उसमें आने का काल, ये सब जो प्ररूपणाएं हो गई है, इन तीन अनियोग द्वारों से गति आगति नाम की चुलिका सूचित की गई है। इसमें गति आगति वो उसमें सब आ जाए, जो कहाँ से आता है कहाँ जाता है वो सब आ जाता है, क्योंकि कर्म बंध के बिना और वह गति आगति चुलिका भी प्रकृति समुत्कीर्तन और स्थान समुत्कीर्तन इन दो अधिकारों को सूचित करती है। देखो यहाँ पहले पहले यह अधिकार देख लो आप, इंडेक्स निकाल तो अनियोग द्वारों के नाम या यहाँ के चुलिका के जो अधिकार है ना, विषय सूची यानी वो विषय परिचय वाला 38 नंबर का पेज है हमारे यहाँ, जहाँ अनुक्रमणी का इंडेक्स लिखा है, प्रकृति समुत्कीर्तन लिखा ना, यानी प्रकृतियों के बारे में बताएंगे यहाँ पर, उसके आगे देखो 39 पेज पर नेक्स्ट पेज पर स्थान समुत्कीर्तन, मैंने उसके अलग अलग स्थान बंद के स्थान वगैरह वगैरह वो बात है, फिर प्रथम महादंडक चुलिका, द्वितीय महादंडक चुलिका, तृतीय महादंडक चुलिका, यानी उसमें कौन से प्रकृतियों का बंध होता है, समित्व के सम्मुख वाले को क्या क्या नहीं बनती वगैरह। फिर उत्कृष्ट स्थिति चुलिका, यानी ये कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है, तो उसमें वो अबाधा अबाधा कांडक वगैरह वगैरह वो सब बताएंगे उसमें। फिर जघन्य स्थिति चुलिका, आगे देखो सम्यक को उत्पत्ति चुलिका, केवल हम नाम बता रहे हैं आपको। फिर गति आगति चुलिका, यानी कौन से उस गति में कौन से गुण स्थान है, कहाँ से कौन से गुण स्थान के साथ निकल सकता है, कहाँ जन्म ले सकता है वगैरह वगैरह बातें आती हैं। अकेले सम्यक को ही नहीं, कर्मों की कितनी सारी बातें होगी। पेज मैंने 38 नंबर का प्रस्तावना बताया, अभी अपना पेज नंबर 3 पर ही रखना। ये क्या कह रहे हैं, चुलिका में जो विषय आए हैं वो 8 नियोग द्वारों में कैसे गर्भित होते हैं वो बात यहाँ बताना चाहते हैं। तो उन्हें क्षेत्र काल और अंतर प्ररूपणा में ये गति आगति नाम का जो अभी अधिकार है, गति आगति चुलिका उसको कहेंगे। और वो जो गति आगति चुलिका भी प्रकृति समुत्कीर्तन और स्थान समुत्कीर्तन इन दो अधिकारों को सूचित करती है, क्योंकि कौन से गति वाले कौन से उनके प्रकृति कौन से पाई जाती है, कौन सी प्रकृति उनका बंध करते हैं। स्थान का अर्थ होता है वो उसके जो पैकेजेस मेरी भाषा में वेरिएशन जो है ना, तीरंज गति बांधने वाले बंध के स्थान कौन कौन से हो सकते हैं, एक इंद्रिका बंध करने वाले की कौन सी प्रकृति वगैरह वगैरह होने हो सकता है। इसमें अभी हमने पढ़ा नहीं कौन से स्थान, उसको स्थान कहते हैं, उसको बंध स्थान उदय स्थान आदि जो बातें होती है ना उसकी बात आती है। क्योंकि अभी कर्म बंध के बिना 7 प्रकार के परिवर्तनों में परिभ्रमण हो नहीं सकता, यानी कर्म बंध के कारण ही जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। ये 7 परिभ्रमण कौन से होते मालूम है, प्रेरणा दे। हाँ, भव और भाव। हाँ,
कर्म और मोक्ष।
यानी द्रव्य कर्म, द्रव्य परिवर्तन में 2 प्रकार से बताते हैं और 6 हो गए क्षेत्र में 2 स्वक्षेत्र पर क्षेत्र, इस तरह से 7 परावर्तन भी कहते हैं। पंच परावर्तन तो मालूम है, उसी में पुद्गल परावर्तन 2 प्रकार कर्म और नो कर्म और हाँ और क्षेत्र में भी 2 गए स्वक्षेत्र पर क्षेत्र। प्रकृति समुत्कीर्तन और स्थान समुत्कीर्तन के द्वारा, यानी प्रकृतियों के वो सब प्रकृति समुत्कीर्तन में सब प्रकृतियों के नाम आदि बताएंगे, ज्ञानावरण वगैरह कितने उसके क्या भेद है। तो जब कर्म बताए तो उन्हीं की स्थिति भी बताएंगे। तो कहते उसी के द्वारा जघन्य स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति नामक 2 चुलिकाएं सूचित की गई, क्योंकि स्वकषाय जीव के स्थिति बंध के बिना प्रकृति बंध नहीं हो सकता। ये कोई क्या कहा, स्वकषाय जीव कहाँ तक है, कौन से गुणस्थान तक,
10वें
गुणस्थान तक। तो 10वें गुणस्थान तक कर्मों में स्थिति बंधेगी, क्योंकि स्थिति और अनुभव कषाय से बनता है। कषाय से बनता है ना, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय और योग, इसमें से कषाय जब तक है इसको सकषाय कहेंगे, ये सारे सकषाय जीव है। तो 10वें तक स्थिति और अनुभाग का बंध है, 11वें में अकेला योग है, 11वां 12वां 13वां में तो मात्र प्रकृति आती ही चली जाती, स्थिति नहीं बढ़ती, स्थिति अनुभाग नहीं बनता है। यही कह रहे हैं कि सकषाय जीव के स्थिति बंध के बिना प्रकृति बंध नहीं हो सकता है, जहाँ कर्म बन रहा है उसमें स्थिति पड़ेगी ही पड़ेगी। तो उसमें जघन्य उत्कृष्ट के भेद भी बताएंगे। काल प्ररूपणा में कहे गए देशों ने अर्ध पुद्गल परिवर्तन, इस वचन से प्रथम सम्यक्त्व का ग्रहण सूचित किया गया है, यानी सबसे पहली बार सम्यक्त्व ग्रहण होता है उस समय से लेकर अर्ध पुद्गल परावर्तन में जीव मोक्ष जाता ही जाता है, देशों ने कहने से फिर उसमें कुछ कम हो जाता है। यदि ऐसा न माना जाए तो देशों ने अर्ध पुद्गल परिवर्तन मात्र मिथ्यात्व की स्थिति का होना संभव नहीं है। वहां तो ये बातें हम पढ़ के आए हैं काल प्ररूपणा में, मिथ्यात्व में रहने का जो सादी शांत काल है लगातार सम्यक से भ्रष्ट होकर मिथ्यात्व में आया, तो फिर अर्ध सम्यक प्राप्ति से अर्ध पुद्गल में मोक्ष जाने वाला है, तो सम्यक का काल माइनस करो फिर मिथ्यात्व में रहेगा, बाद में फिर मनुष्य होगा, फिर सम्यक संयम धारण करके मोक्ष चला जाएगा। ये दोनों ओर से कुछ कम करना है, तो मिथ्यात्व में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है, तो कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन। तो कहते उसके लिए प्रथम सम्यक की बात भी यहाँ बताएंगे। देखो प्रथम सम्यक का ग्रहण सूचित किया है, यही पेज पर पढ़ रहे कि काल प्ररूपणा में कहे गए देशों न अर्ध पुद्गल परिवर्तन इस वचन से प्रथम सम्यक का ग्रहण सूचित किया गया है। यदि ऐसा न माना जाए तो देशों न अर्ध पुद्गल परिवर्तन मात्र मिथ्यात्व की स्थिति का होना संभव नहीं। उस प्रथम सम्यक ग्रहण के द्वारा भी तीन महादंड, अभी हमने नाम बदले पड़े थे ना, पर प्रथम सम्यक ग्रहण करने के योग्य क्षेत्र तीन महादंडक में हमने देखे थे कौन सी प्रकृति बनती है कौन सी नहीं बनती है, फिर मार्गणाओं में भी बताएंगे कौन सी प्रकृतियों का बंध होता है। फिर उनके प्रथम सम्यक ग्रहण करने के योग्य क्षेत्र मैंने प्रथम उपचार समय तो शिक्षित हो सकता है चारों गति के कंडीशन सब बताएंगे। इंद्रिय पंचेंद्रिय के होगा वो भी संघी पंचेंद्रिय के होगा। त्रिविध करण की प्राप्ति, विधय ने प्रकाश तीन प्रकार के करण की प्राप्ति यानी अधकरण अपूर्व करण अनिवृत्ति का। पर्याप्तक पना पर्याप्तों के ही होता है अपर्याप्तों के नहीं होता है। स्थिति खंड और अनुभाग खंड जिसको हम कहें स्थिति कांडक घात जिसको कहें अनुभाग कांडक घात आदि सूचित किए गए हैं। यानी प्रथम समय तो होता है तो ये सब बातें होती है, क्योंकि जिन्होंने एक बार सम्यक्त्व को प्राप्त किया है ऐसे जीवों को अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल से ऊपर संसार का अभाव हो जाए, यानी अधिक से अधिक भटकेगा तो इतना भटकना पड़ेगा इसी कोई जरूरी नहीं है, ये उसी भाव में भी मुक्त जा सकता है। अधिक से अधिक अगर मिथ्यात्व में भी चला जाए एक इंद्रिय में भी चला जाए तो इतने काल के अंदर तो नियम से मोक्ष जाएगा ही जाएगा, ये कहना चाहते। उस मोक्ष के द्वारा भी दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी कर्म के क्षपणा का विधान, दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी की क्षपणा होती है तो उसके प्रोसेस क्या क्या होते हैं, उसके योग्य क्षेत्र गति कारण और स्थितियां सूचित की गई है। इन सब बातों का उन आठ अनियोग द्वारों में निर्णय नहीं किया गया है, उसके संबंध में कोई चर्चा नहीं थी वहां पर, वहां पर केवल अलग पद्धति से उसकी चर्चा थी, क्योंकि वहां उन सबका निर्णय करने पर शिष्यों के बुद्धि व्याकुलता का प्रसंग प्राप्त होता, क्योंकि वहां जो विषय काल को बताते बताते अन्य की बात अगर बताते बैठते तो वो तो टेंशन। अब कहते द्वितीय विकल्प भी ठीक नहीं है, उन्होंने ऑप्शन पूछे थे ना कि जीवस्थान से पृथकभूत हो जाएगा, क्योंकि चुलिका को जीवस्थान से पृथकभूत नहीं माना गया है, ये पृथकभूत हुआ है पृथकभूत करना बरोबर। चार नंबर के प्रश्न, वह चुलिका भी सामान्य विवक्षा से एक प्रकार की है और पर्यायार्थिक नए से नौ प्रकार की है, यानी चूलिका कहने से पूरे पुस्तक का जो विषय उसको चूलिका एक ही नाम देंगे, सबको मिलकर चूलिका कहेंगे, और वो चूलिका के और अलग अलग अधिकार जो हम कहेंगे तो उसके भेद वह इस प्रकार है। कितनी प्रकृतियां बांधता है, अभी ऊपर सूत्र में पूछने वाले इस पद में प्रकृति समुत्कीर्तन और स्थान समुत्कीर्तन नामक दो चूलिकाएं आई है। कितनी प्रकृतियां बांधता है यानी वो तो प्रकृतियों के नाम भी आ जाएंगे, और कितने ने एट ए टाइम कितनी बन सकती है, तो कौन सी गति बनते समय कौन सी प्रकृति बनेगी आदि आदि, मैंने तो अभी किस बारे में है वो नहीं देखा यहाँ पर, तो ये बात यहाँ बताई जाएगी। तो उसको कहेंगे प्रकृति समुत्कीर्तन और स्थान समुत्कीर्तन। देखो कौन कौन से कितनी प्रकृतियां बांधता है, तो उसमें दो अधिकार आ गए, दो चूलिकाएं। अब दूसरा प्रश्न क्या है, किन प्रकृतियों को बांधता है। इस पद में प्रथम द्वितीय और तृतीय दंडक नाम वाली तीन चूलिकाएं अवस्थित है। कितने काल स्थिति वाले कर्मों के द्वारा सम्यक्त को प्राप्त करता है अथवा नहीं प्राप्त करता है। इस पद में जघन्य स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति नाम की दो चूलिकाएं अवस्थित है। आप बता सकेंगे कितने काल स्थिति वाले कर्मों के द्वारा प्रथम उपशम होता है, कितने काल वाले के नहीं होता।
अंतकोड़ाकुड़ी वाले को प्राप्त होगा,
अंतकोड़ाकुड़ी वाले को होगा, और किसने वाले को नहीं होगा।
कितने वाले को नहीं
नहीं होगा। कितनी कर्मों की स्थिति बाकी है तो नहीं होगा।
उत्कृष्ट स्थिति से नहीं होगा।
एक इंद्रियादि असंगी के योग्य जब तक स्थिति है तब तक
उसको सागर से एक हजार सागर तक वाले को नहीं होगा।
क्या नहीं होगा, अंत कोड़ाकोड़ी वाले के होगा। वो बातें आने वाली है सारी, ये हमने प्रंचलब्धि पुस्तक में देखा था। इस पद में जघन्य स्थिति उत्कृष्ट स्थिति नाम की दो चूलिकाएं अवस्थित है। कितने काल के द्वारा मिथ्यात्व कर्म को कितने भाग रूप करता है, और किन क्षेत्रों में तथा किसके पास में कितने दर्शन मोहनीय कर्मों को क्षपण करने वाले और संपूर्ण चारित्र प्राप्त होने वाले जीव के मोहनी कर्म की उपशमना तथा क्षपना होती है। इन पदों में आठवीं चूलिका आई है तथा वा संपूर्णम इस वाक्य में आए हुए वा शब्द में गति आगति नामक नवमी चूलिका विवक्षित है। इस प्रकार पूर्वोक्त सर्व चूलिकाएं नौ होती है, अथवा अवान्तर भेद की अपेक्षा चूलिकाएं अनेक प्रकार की है, यानी उसमें और भी जो कुछ विषय बताए जाएंगे बीच बीच में तो उसके अनेक प्रकार भी कह सकते हैं। अब इन नवो चूलिकाओं के अर्थ प्ररूपणा के लिए आचार्य उत्तर सूत्र कहते हैं। दो नंबर का सूत्र अभी यहाँ पढ़ेंगे ऊपर। कदी काओ पगड़ियो बंधतिति बंधदिति जम पदम तस्स विहासा। कितनी, ये बोल्ड होना चाहिए था नीचे हिंदी में, कितनी और किन प्रकृतियों को बांधता है। यह जो पूर्व सूत्र पठित पद है उसका व्याख्यान किया जाता है। पहले बताया था, देखो पहला सूत्र क्या था, देख लो एक नंबर का सूत्र कितना बड़ा था ना, उसमें कदी काओ पगड़ियो बंधती, ये उसका एक पार्ट हुआ। तो कहते कितने और किन प्रकृतियों को बांधता है, ये जो पहले सूत्र में जो उसका एक भाग था अब उसका यहाँ व्याख्यान किया जाएगा। पूरे सूत्र में अलग अलग प्रश्न पूछे गए थे जो अभी हमने ऊपर उसकी चर्चा की थी, तो अलग अलग की जो विभाषा कहो या उसका जो विवरण है वो अलग अलग पॉइंट्स पर करेंगे। शंका, जिस प्रकार से उद्देश होता है उसी प्रकार से निर्देश किया जाता है, इस न्याय के अनुसार पहले उद्देश किए गए पदार्थ का पहले ही निर्देश होता है, यह बात जानी जाती है। अतएव यह सूत्र आरंभ नहीं करना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? यदि हमें कुछ दो चार पांच बातें बतानी है, जो पहले परसों बात आई थी, चौथे गुणस्थान से मिथ्यात्व गुणस्थान जो है कितने गुणा है, तो किसी कहीं कहीं उसको कहेंगे अनंत गुणा, असंख्यात गुणा, दो ऑप्शन बताए थे। तो जिस क्रम से जो ऑप्शन बताए थे उस क्रम से हमने वहां पर कोई जो मूल बात थी इसलिए वो क्रम बताया था। ख्याल में आई ना बात? तो ऐसे कहते कि जिस क्रम से ये प्रश्न पूछे, पहले सूत्र में जिस क्रम से पूछे है उसी क्रम से उसके एक एक भाग का व्याख्यान होगा, इसलिए दो नंबर का सूत्र कहने की आवश्यकता नहीं थी, ये उसका प्रश्न है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि इस पद में ये चूलिकाएं अवस्थित है और ये चूलिकाएं अवस्थित नहीं है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए, तथा जिस प्रकार से उद्देश होता है उसी प्रकार से निर्देश होता है, इस न्याय के अस्तित्व प्ररूपण के लिए इस सूत्र का आरंभ किया गया। यानी जैसे उद्देश वैसा निर्देश, जिस क्रम से हमने पहले पूछा उसी क्रम से अभी विवरण होगा, ये न्याय भी इससे सिद्ध हो जाता है कि पहला जो प्रश्न पूछा था उसी के यहाँ विवरण होगा। अब विभाषा किसको कहना वो बता रहे। विविध प्रकार के भाषण अर्थात कथन करने को विभाषा कहते हैं। विभाषा, प्ररूपणा, निरूपणा और व्याख्यान, ये सब एकार्थवाचक नाम है। इदानीं पगड़ी समुक्कीर्तनम कत्सामु, पयड़ी भी कहते हैं, पगड़ी भी कहते हैं। अब प्रकृतियों के स्वरूप का निरूपण करेंगे। प्रकृतियों के समुत्कीर्तन को प्रकृति समुत्कीर्तन कहते हैं। देखो, समुत्कीर्तन करना है, बस वो है ये बताना, जो अमुक अमुक प्रकृति है, ये प्रकृति है, ये प्रकृति है, ये हो गया समुत्कीर्तन। जैसे हमने वो पहले 24 अनुयोग द्वारा देखे थे, वहाँ पहला अधिकार वो समुद्र कीर्तन वाला होता था हमेशा। जैसे हम सत कहते वैसे समुद्र कीर्तन। प्रकृतियों के समुद्र कीर्तन को प्रकृति समुद्र कीर्तन कहते हैं, जिसका की अर्थ प्रकृतियों के स्वरूप का निरूपण करना है। इस समय अर्थात आठों प्ररूपणाओं के पश्चात अब करेंगे, अर्थात प्रकृति समुत्कीर्तन नाम की चूलिका को कहेंगे। कस्सामो तथा भनिस्सामो, ये दोनों शब्द एकार्थक है। यहाँ बताया था पहले सूत्र में उन्होंने बताया था। नहीं, वहां नहीं लिखा था। तस्य विहासा, इतना ही बताया था उन्होंने। यहाँ ऊपर लिखा है ना, तीसरे नंबर के सूत्र में ये कस्सामो कहाँ लिखा है? इदानीम पगड़ी समुक्कीर्तनम कस्सामो, वो कस्सामो का अर्थ होता है भनिस्सामो। मैंने बताऊंगा शंका, पहले प्रकृति समुत्कीर्तन को ही किस लिए कहते हैं? उसका समाधान, नहीं, क्योंकि प्रकृतियों के अज्ञात होने पर, इन्हें प्रकृतियां ही मालूम नहीं है तो इतनी इतनी प्रकृतियां बनती है ऐसा कैसा कहेंगे? तो कौन कौन सी प्रकृति, नाम तो लेना चाहिए। समय तो होने पर विशिष्ट प्रकृति का बंधन नहीं होगा, विशिष्ट प्रकृति बन जाएगी तो उनके नाम भी तो पता होने चाहिए। इसलिए कहते हैं अगर प्रकृति ही अज्ञात रहेगी, मालूम नहीं होगी, तो स्थान समुत्कीर्तन आदि के ज्ञान का कोई उपाय नहीं। आदि यानी फिर उसकी स्थिति कैसे बताएंगे, क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे सब, इसलिए नाम पहले पता होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अवयवी के अज्ञात रहने पर अवयव नहीं जाने जा सकते। अवयवी यानी जिसके अवयव है उसको अवयवी कहेंगे, जैसे शरीर है तो अवयवी कहेंगे और हाथ पैर उसके अवयव कहेंगे। अवयवी के अवयव होते हैं, अवयवी ही नहीं मालूम है तो उसके और भेदों का प्ररूपण कैसे कर सकते हैं। तो अवयवी के अज्ञात रहने पर अवयव नहीं जाने जा सकते क्योंकि अन्यत्र वैसा पाया नहीं जाता, इसलिए प्रकृति समुत्कीर्तन को ही पहले कहते हैं। वह प्रकृति समुत्कीर्तन भी मूल प्रकृति समुत्कीर्तन और उत्तर प्रकृति समुत्कीर्तन के भेद से दो प्रकार का है, यानी जिसको हम कहेंगे मूल प्रकृतियों का कथन कहेंगे, उत्तर प्रकृतियों का कथन करेंगे। मूल प्रकृतियों आठ है वो बताएंगे, फिर उनके भेदों को बताएंगे। अपने अंतर्गत समस्त भेदों का संग्रह करने वाली और द्रव्यार्थिक नए निबंधनक प्रकृति का नाम मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति किसको कहते हैं कि जिसमें उसके सारे भेद गर्भित हैं उसको मूल, जैसे ज्ञानावरण मूल प्रकृति है, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान वो सब पांच भेद करेंगे तो उत्तर प्रकृति है। तो ये कैसे अब हम मूल प्रकृति कहा तो उसमें सभी भेद गर्भित हो जाते। एक बात, द्रव्यार्थिक नय निबंधन करते थे वो द्रव्यार्थिक नय का कथन है, सबको मिलकर एक ज्ञानावरण कह दिया हमने, और उसके भेद करना उसको व्यवहार कहेंगे, पर्यायार्थिक कहेंगे। पृथक पृथक अवयव वाली तथा पर्यायार्थिक नए निमित्तक प्रकृति को उत्तर प्रकृति कहते हैं। फिर शंका, इन दोनों भेदों में से मूल प्रकृति समुत्कीर्तन पहले किस लिए करते हैं? ये किसके भेद है मालूम पड़ना चाहिए ना, तो मूल की बात पहले करेंगे। समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि समस्त उत्तर प्रकृतियों का संग्रह करने वाली मूल प्रकृति के प्ररूपण किए जाने पर ही उत्तर प्रकृतियों की प्ररूपणा बन सकती है। अब एक एक नाम बताएंगे मूल प्रकृतियों के। तम जहा, वह प्रकृति समुत्कीर्तन किस प्रकार है, यानी वो जैसे कि ऐसे पूछते ना, जैसे कि कौन कौन सी है वो पूछ रहे। शंकाकार अभी सूत्र के बारे में पूछ रहे कि ये पूछा सूत्र किस लिए कहते हैं, प्रश्न कहने की क्या जरूरत थी, डायरेक्ट बताते हैं। समाधान, सूत्रकर्ता की प्रमाणता के प्ररूपण द्वारा सूत्र की प्रमाणता का निरूपण करने के लिए यह पृच्छा सूत्र कहा है। अब तक की ऐसी पद्धति है, मिथ्या दृष्टि जो कितने हैं पूछकर अनंत है कहते हैं, क्योंकि मूल में जो बताए थे सर्वज्ञ की वाणी में उनको ये पूछा गया था, उन्होंने तो ये प्रश्न उत्तर रूप कहने से वो उनकी जो मूल कर्ता के द्वारा, यानी ये कोई मुनियों ने उसके अपने से वो बात नहीं बताई है, मूल धारा से चली आई ये बात सिद्ध होती है। अब कहते हैं नानावर्णीयम, ज्ञानावर्णीय कर्म है, ज्ञान अवबोध अवगम और परिच्छेद ये सब एकार्थवाची नाम है, सबका अर्थ एक ही है ज्ञान। जैसे हम कहते हैं अवगम तो आपने मालूम हो गया, परिच्छेद परिच्छित्य ऐसा भी शब्द आता है, ये सबका अर्थ क्या है, ज्ञान। उस ज्ञान को जो आवरण करता है वह ज्ञानावरणीय कर्म है। शंकाकार पूछता है ज्ञानावरण नाम के स्थान पर, यानी ज्ञान को आवरण करने वाला ऐसा जो शब्द आया है उसके बदले ज्ञान विनाशक ऐसा नाम क्यों नहीं कहा, ज्ञान का नाश करने वाला क्यों नहीं कहा। उसका समाधान, नहीं, क्योंकि जीव के लक्षण स्वरूप ज्ञान और दर्शन का, ज्ञान और दर्शन जीव का लक्षण है, और लक्षण उसी को कहते हैं जो सभी में पाया जाएगा, ऐसा नहीं कि किसी में पाया जाता है किसी में नहीं पाया जाता, अगर ज्ञान पूरा नाश ही हो जाएगा तो उसको जीव का लक्षण कैसे कहेंगे? तो कहते हैं जीव के लक्षण स्वरूप ज्ञान और दर्शन का विनाश नहीं होता। यदि ज्ञान और दर्शन का विनाश हो जाए तो जीव का भी विनाश हो जाएगा, क्योंकि लक्षण से रहित लक्ष्य पाया नहीं जाता। ये सही लक्षण हमने बताया है, उसके बिना कोई लक्ष्य जीव नहीं होता। तो ज्ञान और दर्शन के बिना कोई भी जीव नहीं होगा, वो कितना भी हीन क्यों ना हो, ज्ञान है उसके। फिर शंकाकार पूछते, ज्ञान का विनाश नहीं होने पर सभी जीवों के ज्ञान का अस्तित्व प्राप्त होता है, तो सभी जीवों में ज्ञान हो जाएगा। समाधान, ज्ञान का विनाश नहीं होने पर यदि सर्व जीवों के ज्ञान का अस्तित्व प्राप्त होता है तो होने दो, उसमें कोई विरोध नहीं है। यानी ये तो अभिष्ट ही है ना, इष्ट है अब मैं तो। अथवा अक्षर का अनंतवा भाग ज्ञान, जिसको हम पर्याय ज्ञान कहते हैं, ये ज्ञान का सबसे पहला जो छोटे में छोटा प्रकट अंश, इसको इतना तो रहेगा ही रहेगा, जिसको हम कहें सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त को भी इतना तो ज्ञान रहेगा ही। तो अक्षर का अनंतवा भाग ज्ञान नित्य उद्घाटित अर्थात आवरण रहित रहता है, निरावरण इसको कहेंगे। यानी इतना तो नित्य हमेशा खुला रहेगा ही रहा इतना अंश, उसके ऊपर कभी भी आवरण नहीं आएगा। इस सूत्र के अनुकूल होने से सर्व जीवों के ज्ञान का अस्तित्व सिद्ध है। शंका, यदि सर्व जीवों के ज्ञान का अस्तित्व सिद्ध है तो फिर सर्व अवयवों के साथ ज्ञान का उपलम्ब होना चाहिए, अर्थात ज्ञान के सभी भागों का या पूर्ण ज्ञान का सद्भाव पाया जाना चाहिए। ज्ञान के सभी अवयव ने जो केवल ज्ञान जैसा है ऐसा सभी को प्रकट होना चाहिए। समाधान, यह कहना उपयुक्त नहीं, क्योंकि आवरण किए गए ज्ञान के भागों का उपलम्ब होने में विरोध आता है। आवरण नाम तभी पड़ा है ना कि जिस संबंधी ज्ञान का उघाड़ नहीं है वो आवृत है। शंका, आवरण युक्त जीव में आवरण किए गए ज्ञान के भाग क्या है अथवा नहीं है? यदि है तो वे आवृत नहीं कहे जा सकते, क्योंकि संपूर्ण रूप से विद्यमान भागों के आवरण मानने में विरोध आता है। यदि नहीं है तो उनका आवरण नहीं माना जा सकता, क्योंकि आवरियमान अर्थात आवरण किए जाने योग्य ज्ञान के अभाव में आवरण के अस्तित्व का विरोध आता है। देखो इनको क्या कहना चाहते हैं शंकाकार, इससे देखो यहाँ क्या कहते हैं। आवरण युक्त जीव में, ये सारे छंद से ना आवरण वाले, आवरण किए गए ज्ञान के भाग क्या है अथवा नहीं है? यानी अभी हम कहेंगे अवधि ज्ञान नहीं है हमको, तो अवधि ज्ञान के ऊपर आवरण हुआ है, यानी अवधि ज्ञान वाला जो भाग है वो आवृत है, तो कहते वो है कि नहीं है, तो अवधि ज्ञान है कि नहीं है? ये उसने दो ऑप्शन दिए, अवधि ज्ञान आवरण है तो अवधि ज्ञान है कि नहीं है, ये दो प्रश्न पूछे। यदि है तो आवृत नहीं कहा जा सकते, अगर आपको अवधि ज्ञान है तो उसको आवृत कैसे कहेंगे, क्योंकि वो तो है प्रकट, क्योंकि जो प्रकट है उसको आवरण मानने में विरोध आता है। अब दूसरा प्रश्न क्या पूछा, यदि नहीं है तो उसका आवरण नहीं माना जा सकता। क्योंकि आवरण किए जाने योग्य ज्ञान के अभाव में आवरण के, यानी वो ऐसे प्रश्न पूछ रहा है कि दोनों से पकड़ना चाहता है, क्योंकि अवधि ज्ञान है तो उसका आवरण बनेगा, दूसरी ओर पूछ रहे अगर अवधि ज्ञान है तो आवरण काहे का, दोनों ओर से हो गए ना उसके प्रश्न। यानी उसके मान्यता क्या है, अंदर वो ज्ञान है और उसके ऊपर आवरण डाला, ऐसा नहीं, पर्याय में नहीं है वो। जैसे केवल ज्ञान है और उसके ऊपर आवरण डाला है क्या? नहीं, वो प्रकट ही नहीं हुआ है, केवल ज्ञान शक्ति रूप है, उसको प्रकट नहीं हुआ तो हम कहेंगे वो आवरण है। अभी समाधान करेंगे उसका। समाधान यहाँ आशंका का परिहार करते हैं। द्रव्यार्थिक नय के अवलंबन करने पर आवरण किए गए ज्ञान के अंश सावरण जीव में भी होते हैं, क्योंकि जीव द्रव्य से पृथकभूत ज्ञान का अभाव है। यानी द्रव्यार्थिक नय न हमें उसके वो पर्याय में पर्याय की चर्चा नहीं है, जीव या सच वो ज्ञान है उसमें, तो ज्ञान है तो जीव से तो पृथक बोध तो ज्ञान नहीं होता, तो जीव है तो ज्ञान भी है उसके, तो कहेंगे इसलिए उसको आवरण सहित मानेंगे। यहाँ पर्याय की बात नहीं हो रही, और शंकरकार पर्याय में प्रकट मानने की बात कर रहा था। अथवा विद्यमान ज्ञान के अंश से आवरण किए गए ज्ञान के अंशों का कोई भेद नहीं है, यानी द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा उन्होंने बात की। शंकाकार पूछते हैं, ज्ञान के आवरण किए गए और आवरण नहीं किए गए अंशों की एकता कैसे हो सकती है? उसका समाधान, नहीं, क्योंकि राहु और मेघों के द्वारा सूर्यमंडल और चंद्रमंडल के आवरित और अनावरित भागों के एकता पाई जाती है। यानी वो जो आवरण किए गए हैं और जो नहीं आवरण किए गए वो तो चंद्र सूर्य के वो भाग है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इस प्रकार उक्त व्यवस्था के होने पर आवरियमान और आवारक भाव बन जाता है। आवरियमान जिसको आवरण करना है, यानी ज्ञान ये हो गया आवरियमान, और आवरण करने वाला कौन है?
कर्म।
अर्थात ज्ञान तो आवरण करने योग्य और कर्म पुद्गल आवरण करने वाले सिद्ध हो जाते हैं। यदि उक्त व्यवस्था न मानी जाएगी तो उसके अनुपलम्ब का प्रसंग प्राप्त होगा, यानी वो तो बात बन नहीं सकेगी। किंतु अभी पर्यायार्थिक की बात करेंगे, ये द्रव्यार्थिक नय की बात हो गई। पर्यायार्थिक नय का अवलंबन करने पर आवरियमान ज्ञान भाग सावरण जीव में नहीं होते हैं। आवरियमान ज्ञान भाग, यानी अभी हमने अवधि ज्ञान का उदाहरण लिया था कि अवधि ज्ञान हमें नहीं है, यानी हमारा अवधि ज्ञान आवरियमान है, वो ज्ञान का भाग, कौन सा अवधि ज्ञान वाला जो ज्ञान का अंश है वो हमारा आवरित है। तो कहते पर्यायार्थिक नय के अपेक्षा ये सावरण जीव, आवरण सहित वाले जीव में, अभी हम ज्ञानावरण की बात कर रहे हैं, तो ज्ञानावरण सहित वाले जो जीव है उस जीव में नहीं होते, वो पर्याय में प्रकट नहीं है। ये पर्यायार्थिक नय में, ये पर्याय में वो ज्ञान ही नहीं है। द्रव्यार्थिक नय में कहेंगे वो तो अवधि ज्ञान उसके आवृत है, समझ में आई बात? यानी सभी जो ज्ञान है वो आवृत है ऐसा हम कहेंगे, किस अपेक्षा से? द्रव्यार्थिक नय की। क्योंकि वे ज्ञान भाग उस जीव में नहीं पाए जाते, यानी उतना ज्ञान का अंश उस जीव में है ही नहीं, इसलिए हम कहेंगे पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा उसको कहेंगे पर्याय में है ही नहीं वो, और द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा कहेंगे जीव में तो है परंतु वो आवृत है। दूसरी बात यह है कि यह सूत्र पर्यायार्थिक नय का अवलंबन करके स्थित नहीं है, ये ज्ञानावरण है ऐसा बताया था, क्योंकि उसमें आवरियमान और आवारक इन दोनों के व्यवहार का अभाव है। क्या कहना चाहते हैं? ये ज्ञानावरण ये शब्द जो तैयार हुआ, ज्ञान है और उसका आवरण है, यानी ज्ञान के भी होना चाहिए और आवरण का भी होना चाहिए। पर्यायार्थिक नय में जब कहेंगे पर्याय में वो पर्टिकुलर ज्ञान ही नहीं है, समझ में आती है बात? तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते, पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा दोनों एक साथ नहीं होते, समझ में आई क्या बात हो रही है? यानी केवल ज्ञान है पर्याय में प्रकट और ऊपर आवरण आया, क्या ऐसा है? तो नहीं, ये बात द्रव्यार्थिक नय से लागू होती है, पर्यायार्थिक नय से लागू नहीं होती। फिर से पढ़ते देखो, सेकंड पैराग्राफ है ना, पेज नंबर 8 पर, दूसरी बात यह है कि यह सूत्र पर्यायार्थिक न्याय का अवलंबन करके स्थित नहीं है, क्योंकि उसमें आवर्यमाण एक ज्ञान हुए ना जिस पर आवरण करना है, और आवारक ये कर्म, इन दोनों के व्यवहार का अभाव है। दोनों एक साथ वहां नहीं कहेंगे हम, किंतु यह सूत्र द्रव्यातिक न्याय का अवलंबन करके अवस्थित है, इसलिए यहाँ पर आवर्यमाण और आवारक भाव विरोध को प्राप्त नहीं होता। अभी समझ में आए ना द्रव्यातिक पर्यायिक का अर्थ क्या है? यानी पर्याय की अपेक्षा वो ज्ञान प्रकट है और उस पर आवरण आया, ऐसा नहीं है। शंकाकार पूछ रहे ज्ञान को आवर्यमाण किस लिए कहा है? उसका समाधान, अपने विरोधी द्रव्य के सन्निधान अर्थात सामिप्य होने पर भी जो निर्मूलता विनष्ट नहीं होता है उसे आवर्यमान कहते हैं। ज्ञान को आवर्यमान क्यों कहा? वो मूलतः नष्ट नहीं होता है
कुछ बात,
और दूसरे अर्थात आवरण करने वाले विरोधी द्रव्य को आवारक कहते हैं, क्योंकि विरोधी कर्म द्रव्य के सन्निधान होने पर, विरोधी यानी प्रतिपक्षी हम कहते जिसको, सन्निधान यानी उसको निकटता होने पर, समीपता होने पर ज्ञान का निर्मूल विनाश नहीं होता है, क्योंकि वैसा मानने पर जीव के विनाश का प्रसंग आता है। मूलतः ने उसका तो स्वभाव तो ज्ञान 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 है, वो तो कभी स्वभाव तो स्वभाव में तो कोई आवरण नहीं होता है, ये तो जो ज्ञान प्रकट नहीं होता उसको कहेंगे यहाँ आवरण आया। इसलिए ज्ञान तो आवर्यमान है और कर्म द्रव्य आवारक है ऐसा कहा गया है। शंकाकार पूछ रहे हैं जीव द्रव्य से पृथक भूत पुद्गल द्रव्य के द्वारा जीव का लक्षणभूत ज्ञान कैसे विनष्ट किया जाता है? ये तो जीव है और उसका जो लक्षण है ज्ञान दर्शन चैतन्यमय, पुद्गल तो जड़ है, तो ये जड़ के द्वारा जीव का लक्षण ज्ञान है वो विनष्ट कैसे होगा, ये प्रश्न है। उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जीव द्रव्य से पृथक भूत घट पट स्तंभ और अंधकार आदि पदार्थ जीव के लक्षण स्वरूप ज्ञान के विनाशक पाए जाते हैं। क्या कहना चाहते हैं? अन्य जो पदार्थ है ना हमारे सामने उसके द्वारा भी ज्ञान आवृत होता हुआ दिखता है, नहीं समझे? दे दो कोई उदाहरण। नहीं नहीं वो नहीं, नहीं है, ये घट पट स्तंभ आदि, अभी ये हम
खंबा है, खंबा
चीज है, ये हमने सामने रख दिया तो सामने का नहीं दिख रहा है। जैसे कोई वस्तु है उस पर हमने वस्त्र डाल दिया तो वस्तु नहीं दिख रही है, ये खंबे के उस पार का हमको दिख नहीं रहा, वो खंबा स्तंभ बीच में आ गया, तो ये भी ज्ञान को रोक सकते है ना, ये कहना चाहते है। ये तो लौकिक उदाहरण दिया उन्होंने, अन्य भी चीजें हैं वो ज्ञान पर आवरण करने हुए विनाशक पाए जाते हैं। जैसे अंधकार में कुछ नहीं दिख रहा है, अंधकार भी पुद्गल है। प्रश्न ये पूछा है था कि ये पुद्गल जो कर्म है पुद्गल तो है वो ज्ञान को आवरण कैसे करता है? इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान का आवरण करने वाला और प्रवाह रूप से अनादि बंधन बद्ध पुद्गल स्कंद, अनादि बंधन बद्ध ने अनादि से बंधा हुआ है, ऐसा नहीं कि कभी जीव शुद्ध था और बाद में उसकी व्यवस्था बंधा, ऐसा नहीं है। तो कहते हैं कि ये सिद्ध हुआ ना, ज्ञानावरण का अस्तित्व सिद्ध कर दिया उन्होंने, ज्ञान का आवरण करने वाला और प्रवाह रूप से अनादि बंधन बद्ध पुद्गल स्कंध ज्ञानावरण कर्म कहलाता है। दंशनावरणीयम दर्शनावरणीय कर्म है, देखो देखो एक एक कर्म है ये बताना, वो समझ कीर्तन हुआ उसके, क्योंकि उनकी सत्ता होती है पाई जाती है, ये बताना है। आत्मविषयक उपयोग को दर्शन कहते हैं, यह दर्शन ज्ञान रूप नहीं है, क्योंकि ज्ञान बाह्य अर्थों को विषय करता है तथा बाह्य और अंतरंग विषय को करने वाले ज्ञान और दर्शन की एकता नहीं है। क्योंकि वैसा मानने में विरोध आता है और ज्ञान को ही दो शक्तियों से युक्त नहीं माना जा सकता, क्योंकि पर्याय के अन्य पर्याय का अभाव माना गया है। इसलिए ज्ञान दर्शन लक्षणात्मक जीव मानना चाहिए। ये दोनों रूप उसका लक्षण बताए, ज्ञान दर्शन चैतन्य जिसको कहेंगे। देखो कहीं कहीं ऐसा भी उसका विषय निरूपण आता है, प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है, तो यहाँ पर भी जो चैतन्य है वो भी सामान्य विशेषात्मक है। सामान्य वो दर्शन है और विशेष है वो ज्ञान है, ऐसा भी वर्णन आता है। यह दर्शन आवरण करने के योग्य है, क्योंकि विरोधी द्रव्य के सन्निधान होने पर भी इसका निर्मूल रूप से विनाश नहीं होता। यानी भले वो कितने ज्ञान दर्शनहीन हो जाए, पूरा विनाश तो नहीं होता है। हमने कल परसों देखा था ना, चक्षु दर्शन तो अनादि से चला आ रहा है, वो कभी नहीं ये बात नहीं हो रही है। यदि दर्शन गुण का निर्मूल विनाश होने लगे तो जीव के भी विनाश का प्रसंग प्राप्त होता है, क्योंकि लक्षण के विनाश होने पर लक्ष्य के अवस्थान का विरोध है। यानी लक्षण वो जिसको लक्षण बांधना है वो लक्ष्य चीज रहेगी नहीं। दूसरी बात यह है कि ज्ञान और दर्शन के जीव का लक्षणत्व असिद्ध भी नहीं है, यानी प्रसिद्ध है, क्योंकि दोनों के अर्थात ज्ञान और दर्शन के अभाव होने पर जीव द्रव्य का ही अभाव प्राप्त होता है। हाँ, यहाँ आत्मविषयक ज्ञान बाह्य अंतरंग बाह्य दोनों को ज्ञान लिया। ज्ञान केवल बहिरंग नहीं लिया, अंतरंग बहिरंग दोनों लिया। देखो बाह्य अर्थों को विषय करता है, इसका वो सुखया में बहुत अच्छा विवरण किया। यानी दर्शन केवल आत्मा को ही ग्रहता है, बाह्य को नहीं, ऐसा नहीं किया, क्योंकि आत्मदर्शनमयी वो दृष्टि शक्ति जो है, यह सर्वदर्शित्व शक्ति में आया है ना, 47 शक्तियों में भी आत्मदर्शन में, क्योंकि भेद किया नहीं है। आत्मदर्शन में उसके आत्मा को कहो या पर पदार्थों का नाम लेंगे तो स्व और पर का भी भेद हो गया, उसका भी उतना भी भेद नहीं करना है, इसलिए वो आत्मदर्शन में ही हो जाता है, उसमें स्व और पर का भी भेद नहीं रहता है, दोनों को विषय हो जाता है। अकेले स्व को विषय करने वाला ऐसा अगर लेंगे, क्योंकि नियमसार में उसका भी निषेध किया हमने, जैसे स्वपर प्रकाशक ज्ञान है, स्वपर प्रकाशक दर्शन भी है, परंतु फिर भी उसका इस तरह से वर्णन आता है, गवला में भी आता है, बृहद द्रव्य संग्रह में भी आता है। ये शाम को इसका विवेचन बहुत विस्तार से हुआ था एक दिन। ये हो गया ना शंका। यदि ज्ञान और दर्शन के अभाव होने पर जीव द्रव्य का ही अभाव प्राप्त होता है तो होने दो। समाधान नहीं, क्योंकि स्व पर व्यवसायात्मक प्रमाण के अभाव में प्रमेय रूप शेष द्रव्यों के भी अभाव की आपत्ति आती है। क्या कहना चाहते हैं? स्व पर व्यवसायात्मक प्रमाण, ज्ञान क्या है? प्रमाण है, स्व पर दोनों को जानने वाला है, और ज्ञान ही नहीं रहेगा तो ज्ञेय भी नहीं कहेंगे। ज्ञान तो उसी को कहेंगे जो स्वगेय और परगेय को जानता है उसको ज्ञान कहेंगे। और यहाँ प्रमेय रूप शेष द्रव्यों के भी अभाव की आपत्ति आती है, ज्ञान ही नहीं है तो प्रमेय रूप कोई द्रव्य भी नहीं है ऐसा कहेंगे, कहा भी है। एगो मेसा सदो अपानान दंशन लखनो से साधु बाहिरा भावा सौवे संयोग लक्षणा। ज्ञान दर्शन लक्षणात्मक मेरा आत्मा एक है, शाश्वत है, शेष सर्व संयोग लक्षणात्मक भाव बाहरी है।
ये थोड़ा आगे वाला शब्द देते हैं आत्मविषयक उपयोग को दर्शन के लिए, यह दर्शन ज्ञान रूप नहीं है क्योंकि ज्ञान ज्ञान
यानी दर्शन जुदा है ज्ञान जुदा है, यह दर्शन को ज्ञान रूप मानना ठीक नहीं है, यह दर्शन ज्ञान रूप नहीं है।
इसे बताया आत्मविषयक उपयोग को दर्शन कहते हैं,
उसी की बात अभी मैंने की, उसी की चर्चा की थी अभी तक, उसी को आत्मविषयक उपयोग कहते हैं।
सदर्शन
क्योंकि सामान्य रूप से ग्रहण हमने इसका दर्शन किया ऐसा कह ही नहीं सकते क्योंकि आपने इस चीज को नक्की कर दिया।
हाँ।
तो कहाँ हो गया आत्मा को विषय करता कहो या सब बाकी पर को करता कहो, कोई एक ही बात है क्योंकि कोई जुदा भेद किया ही नहीं उसने, तो आत्मा का लक्षण है तो इसके आत्म विषय कहेंगे उसको, है तो जीव का अपना उपयोग उसको आत्मा उपयोग कहेंगे। ये इस बात पर ही बहुत चर्चा होती है आत्मा कोई विषय पर को करता ही नहीं ऐसा नहीं लिखना है।
अच्छा मैं वही
सामान्य मात्र ग्रहण होता है सबका, सब कहेंगे उसे आत्मा का ही कहेंगे ना। देखो ये ऊपर हमने जो श्लोक पढ़ा था, ज्ञान दर्शन लक्षणात्मक मेरा आत्मा एक है शाश्वत है शेष सर्व संयोग लक्षणात्मक भाव बाहरी है, बाहरी ने मेरे से जुदे हैं। दूसरे गाथा अशरीरा जीव गणा उवजुत्तादंसनेयनानेय सायारमणायारं लक्षणमेयं तु सिद्धानम्। जो अशरीर है यानी शरीर से रहित है, जो जीव होकर प्रदेशों की अपेक्षा घन रूप है, जीव घना यानी जो उसका क्षेत्र उसका फैलाव है ना घन स्वरूप है। वजुत्ता दंशने नानीय ज्ञान और दर्शन में उपयुक्त है वे सिद्ध है। इस प्रकार साकार और अनाकार यह सिद्धों का लक्षण है, ज्ञान को साकार कहते हैं दर्शन को अनाकार कहेंगे। इस प्रकार के दर्शन गुण को जो आवरण करता है वह दर्शनावरणीय कर्म है, अर्थात जो पुद्गल स्कंध मिथ्यात्व असंयम कषाय और योगों के द्वारा, देखो यहाँ प्रमाद का भेद अलग नहीं गिनते हुए चार भेदों में बताते हैं, उसमें मिथ्यात्व असंयम कषाय और योग कहेंगे, प्रमाद उसी में गर्भित हो जाता है कषाय में, तो ये मूल प्रत्यय चार भी कहने की पद्धति है, ये बंध के कारण उसको प्रत्यय कहेंगे। तो कहते हैं कि मिथ्यात्व असंयम कषाय और योगों के द्वारा कर्म और स्वरूप से परिणत होकर, यानी पुद्गल स्कंध स्वयं कर्मरूप परिणमित हो रहा है, कल हमने बात दी ना कारमाण वर्गणा स्वयं कर्मरूप परिणमित होती है, उसमें यहाँ जीव ने क्या किया अपने में किया भाव, कर्म में कुछ नहीं किया, कर्म अपनी योग्यता से उसके स्कंध उस रूप हो गए, परंतु जिसको कहेंगे हम ये निमित्त रूप से जीव के भाव है मिथ्यात्व असंयम कषाय और योग, तो कर्म रूप से प्रेरित होकर जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप से समवेत है और दर्शन गुण का प्रतिबंध करने वाला है, वह दर्शनावरणीय कर्म है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। वेदनीयम, वेदनीय कर्म है, जो वेदन अर्थात अनुभवन किया जाता है वह वेदनीय कर्म है। शंकाकार पूछते हैं, इस प्रकार की व्युत्पत्ति के द्वारा तो ऐसा अगर हम कर्म या इसका अर्थ करेंगे शब्द का जो वेदन किया जाता है तो सभी कर्मों के वेदनीयपने का प्रसंग प्राप्त होता है। सभी कर्मों का वेदन हो रहा है ना, उसी का जो फल मिल रहा है उसको अनुभवन किया जा रहा है। कहते यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि रूढ़ी के वश से कुशल शब्द के समान विवक्षित उद्गल पुंज में ही वेदनीय शब्द की प्रवृत्ति पाई जाती है। अर्थात जिस प्रकार कुशल शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ कुश को लाने वाला होने पर भी उसका रूढ़ार्थ चतुर किया जाता है, यानी एक्सपर्ट कुशल है ना, अपने अपनी चीज में वो एक्सपर्ट होता है ना, उसको हम कुशल कहते हैं, कुशल कारागीर है। पर उसका शब्दशार्थ है कुशल, कुश को लाने वाला, या मंगल, मंगम लाती। मंगल का अर्थ क्या है? सुख को लाने, मंगल यानी सुख, सुख को लाने वाला वो मंगल, ऐसे कुश को लाने वाला वो कुशल। तो कहते वो तो रूढ़ी अर्थ क्या है, चतुर को कुशल कहते हैं। उसी प्रकार सभी कर्मों में वेदनीयता होने पर भी वेदनीय संज्ञा एक कर्म विशेष के लिए रूढ़ है, यानी रूढ़ी अर्थ उसको रूढ़िगत अर्थ ले लेना उसमें। अथवा जो वेदन कराता है वह वेदनीय कर्म है। जीव के सुख और दुख के अनुभवन का कारण मिथ्यात्वादी प्रत्ययों से के वश से, ये मिथ्यात्वादी प्रत्यय कौन से देखे अभी ब्रह्मा? मिथ्यात्व, संयम, कषाय, योग, ये प्रत्यय कहलाते। कर्म बंध के कारण उसको प्रत्यय कह रहे हैं। मिथ्यात्व आदि प्रत्ययों के वश से, उसके निमित्त से कर्मरूप पर्याय से परिणत। क्या कहना चाहते हैं? ये जो वेदनीय का वर्णन कर रहे हैं वो कैसे है? तो कहते जीव के सुख दुख का कारण है, जीव को सुख या दुख का अनुभव होता है उसके वो कारण है, उसके वो निमित्त है। दूसरी बात, वो क्यों हुए पुद्गल स्कंद? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय वगैरह, योग जो हम कहते पांच या चार कहो, प्रमाद को कषाय में गर्भित करके उसके कारण ये कर्मरूप हुए हैं। और कैसे है? जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप संबंध को प्राप्त, जीव के जितने प्रदेश है वहीं पर वो कारमाण वर्गणा कर्मरूप परिणमित होकर वहीं पर वो संबंध को प्राप्त हुए, वेदनी इस नाम से कहा जाता है। अब शंकाकार पूछते हैं, उस वेदनीय कर्म का अस्तित्व कैसे जाना जाता है? कहते सुख और दुख रूप कार्य अन्यथा हो नहीं सकते। इस अन्यथा अनुपपत्ति से वेदनीय कर्म का अस्तित्व जाना जाता है और कारण से निरपेक्ष कार्य उत्पन्न होता नहीं, यानी बिना कारण के कार्य नहीं होता है, क्योंकि अन्यत्र उस प्रकार देखा नहीं जाता। जीव दुख स्वभावी नहीं है, क्योंकि जीव के लक्षण स्वरूप ज्ञान और दर्शन के विरोधी दुख का जीव स्वभाव होने में विरोध आता है, यानी जीव का लक्षण क्या है? ज्ञान और दर्शन है, और दुख क्या है? उसके विरोधी है। तो उसको भी अगर हम जीव का स्वभाव मानेंगे तो ये बात घटित नहीं होती। मोहनीय कर्म है, ये है वाली बताएं ना, कौन कौन से कर्म है उसकी बात बताएंगे यहाँ पर। दर्शन की बात लिख के रखते हैं। योग मोहनीय कर्म है, जो मोहित किया जाता है वह मोहनीय कर्म है। शंका, इस प्रकार की व्युत्पत्ति करने पर जीव के मोहिनी कर्मपना प्राप्त होता है, क्योंकि जीव को ही मोहित किया जाता है ना, तो जीव ही मोहिनी कर्म हो जाएगा। समाधान, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीव से अभिन्न और कर्म ऐसे संज्ञा वाले पुद्गल द्रव्य में उपचार से कर्तृत्व का आरोपण करके उस प्रकार की उत्पत्ति की गई है। यानी जीव को ही मोहित किया जाता है, परंतु उसी जीव के साथ अभी एक क्षेत्रावगाह रूप से अभिन्न हो गया है वो कर्म, उसको भी हम जीव कहकर उपचार से उसी को कहेंगे वो मोहित किया जाता है। अथवा जो मोहित करता है वो मोहित कर्म है, मोहिनी कर्म है। ऐसी व्युत्पत्ति करने पर धतुरा मदिरा और भार्या आदि के भी मोहनीयता प्रसक्त होती है, यानी अन्य पदार्थों में उसको मोहनीयपना सिद्ध हो जाएगा। समझ नहीं, क्योंकि यहाँ पर मोहनीय नामक द्रव्य कर्म का अधिकार है, अतएव कर्म के अधिकार में धतुरा मदिरा और स्त्री आदि को मोहनीय कर्म मानना संभव नहीं है। तो कर्म क्या वस्तु है? कर्म पुद्गल द्रव्य है। शंका, यदि ऐसा है तो सभी पुद्गलों के कर्मपना प्रसक्त होता है। यहाँ क्या ना, कर्म क्या है तो पुद्गल है, तो सभी पुद्गल कर्म है क्या? नहीं, ऐसा नहीं कहा। कर्म सारे पुद्गल है, सभी जो पुद्गल है वो उसको हमने कर्म नहीं कहेंगे। समझ में आती है बात? तो शंकाकार ने वही पूछा ना, सभी पुद्गलों को कर्म मानो आप, क्योंकि कर्म पुद्गल है। कहते नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व आदि बंध कारणों के द्वारा, अभी हमने देखे थे मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग, उनके द्वारा जीव में संबंध को प्राप्त तथा जन्म जरा और मरण आदि कार्यों के करने में समर्थ पुद्गलों के कर्मपना माना गया है। ऐसे पुद्गलों को यहाँ कर्म कहेंगे, क्योंकि वो जीव के साथ निमित्त पने बनता है और जीव के निमित्त से वो बंधे हैं, और उसका निमित्त भी जीव में जो पड़ रहा है उसी को यहाँ पर कर्म कहेंगे। तीन नंबर, जीव परिणाम हेदु कम्मत्तम पोगला परिणमंती नयनान परिणदो पुनः जीवो कम्मम समाधियदि। जीव के रागादि परिणामों के निमित्त से, परिणाम हेतु ने कौन से परिणाम जो हमने देखे थे, कौन कौन से बंधक के कारण, उसके हेतु से निमित्त से पुद्गल कर्मरूप परिणमित होते हैं। पुद्गल जो है कारमाण वर्गणा, वो कर्मरूप परिणमित होते हैं, किंतु ज्ञान परिणत जीव कर्म को नहीं प्राप्त होता। ज्ञान परिणत जीव यानी वो तो सम्यक दृष्टि कहो या केवल ज्ञानी कहो, ज्ञान परिणत यानी वो तो वो जिसको हम कहेंगे कि वहां तो मुख्यता की अपेक्षा समय दृष्टि उसको बंद नहीं है, ऐसा कहते हैं, उस अपेक्षा भी ले सकते हैं यहाँ पर। जारिसो परिणामो तारिसो चेव कम्म बंधो वी वत्थु सुविषम सम सन्निदेशु अज्जपजोएन। विषम और सम संज्ञा वाली अर्थात अनिष्ट और इष्ट वस्तुओं में आत्म संबंधी अध्यात्म योग से, यानी वो तो उसको हमने मैं मान लिया, उसमें अहमपना मान लिया, अहम बुद्धि कर ली, आत्म बुद्धि कर ली, मिथ्यात्व आदि के निमित्त से जिस प्रकार का परिणाम होता है, कर्म बंध उसी प्रकार का होता है, यानी जैसे जीव के परिणाम है वैसा ही कर्म बंध। मिथ्यात्व आदि बंध कारणों के द्वारा क्रोध मान माया लोभ आदि कार्य करने की शक्ति से परिणत हुए पुद्गल जीव के साथ संबंध होकर प्राप्त होकर संबंध को प्राप्त होकर मोहनीय संज्ञा वाले हो जाते हैं। यह उक्त कथन का तात्पर्य क्या कहना चाहते हैं? बंध आदि मिथ्यात्व आदि बंध कारण यानी मिथ्यात्व असंयम कषाय योग उसके द्वारा वो बंध के कारण है। अब उसके कारण क्या होता है? कार्मानुवर्गणा पुद्गल रूप यानी स्कंध रूप होकर परिणमती है जीव के साथ पड़ी रहती बनती है। परंतु उसके लिए बीच में एक शब्द डाला उन्होंने और कि क्रोध मान माया लोभ आदि कार्य करने की शक्ति से परिणत पुद्गल। ये कार्मानुवर्गणा मोहनी कर्म रूप हो गए है, उन कर्मों में कैसी कार्य की क्रोध मान माया लोभ उत्पन्न करे ऐसी शक्ति उन पुद्गलों में आई। ये पुद्गलों की शक्ति है। देखो फिर से, मिथ्यात्वादी बंध कारणों के द्वारा क्रोध मान माया लोभ आदि कार्य करने की शक्ति से परिणत हुए पुद्गल जीव के साथ संबंध को प्राप्त होकर मोहनीय संज्ञा वाले हो जाते हैं। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अब कहते हैं आयु कर्म है, ये है वाले आठवें आठ ही कर्म है या नौवे सूत्र कैसे आया? पहले वाला वो तम जहां वाला था ना, ये पहले और ऐसे पहले पूरी क्वेश्चन पूछी थी कौन सी प्रकृति बनती है क्या होता है वो सब। पहले दो चार सूत्र ऐसे चले जाए फिर वो तम जहां वाला सूत्र आया। हाँ बाद में शुरू हुआ ना तम जहा के बाद ये शुरू हो गया।
ये ज्ञानावरण पहले था,
अभी तो हमारे ये चार तीन चार पाँच पाँच ही चालू पाँचवा चालू है। ज्ञानावरण कर्म है पाँच है, पाँच छ सात आठ नौ
पाँच हो गए।
पहले किसको लिया? ज्ञानावरण दर्शनावरण
मौन नहीं वेदनी
है
पीछे मौन
फिर मौन है। ये घाती अघाती का भेद नहीं कर रहे यहाँ। ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय मोहिनी फिर आयु नाम गोत्र और अंतराय, ऐसा ये क्रम है इनका। ये चार नहीं
है,
चार के लिए वेदनीय को अघाते में डालना और अंतराय को यहाँ लाना। ये कल पढ़ेंगे आयु कर्म है यहाँ से। जावानी के ज्ञान से सोहे लोकारो सोवानी मस्तकनम सदा देतमु।